जिंदाबाद साथियों, आप सुन रहे हैं ये जो क्लाइमेट है पॉडकास्ट अविनाश चंचल के साथ। यहां हम बात करते हैं क्लाइमेट और उससे जुड़े मुद्दों की, जल जंगल और जमीन से जुड़ी वो बातें जो सुर्खियां नहीं बन पाती, एनवायरमेंट की वैसी खबरें जिन्हें आसान भाषा में लोगों को समझने और समझाने की जरूरत है। तो आइए सुनते हैं ये जो क्लाइमेट है।
जिंदाबाद जोहार साथियों, मैं अभी दिल्ली में हूँ और जब ये एपिसोड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय मेरे इलाके की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 285 है, जो कि पुअर कैटेगरी में आता है। हालांकि पिछले महीने जिस तरह की एयर क्वालिटी इस शहर की रही है, कुछ लोग इसे सो कॉल्ड इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं। ये बात अलग है कि WHO के स्टैंडर्ड से ये कई गुना ज़्यादा है, हमारा जो नेशनल एयर क्वालिटी एम्बियंट स्टैंडर्ड्स है उससे भी कई गुना ज़्यादा है। और कई सारे रिसर्चर बताते हैं एयर पोल्यूशन का कोई भी लेवल जो है वो सेफ लेवल नहीं है। आज इसी एयर पोल्यूशन को लेकर हम बात करने वाले हैं और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक जानी मानी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, क्लीन एयर कैंपेनर, कॉलमनिस्ट, राइटर ज्योति पांडे लवाकरे जुड़ी हैं। ज्योति ने कई इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस के लिए लिखा है, जिसमें द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द फाइनेंशियल टाइम्स, द इंडिपेंडेंट, द न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडिया इंक ब्लॉग और द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स एंड मिंट जैसे प्रमुख अखबार और मीडिया हाउसेस शामिल हैं। उनके एयर पोल्यूशन से जुड़ी राइटिंग आप द वायर और scol.in पर भी पढ़ सकते हैं। ज्योति केयर फॉर एयर नाम की संस्था की को फाउंडर भी है, जो स्कूलों और आम नागरिकों के बीच एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर काम करती है। ज्योति ने एयर पॉल्यूशन पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है Breathing air is injurious to your health, the human cost of air pollution and how can you be the change। इस किताब में उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ रिसर्च और पॉलिसी एनालिसिस भी किया है और यह बताया है कि कैसे बदलाव लाया जा सकता है। इस किताब का लिंक आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्योति, सच में थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। सबसे पहले मैं आपके काम के बारे में जानना चाहूंगा। आप एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट रही हैं, फाइनेंस के इश्यूज पे लिखती रही हैं और अब आप क्लीन एयर के मुद्दे पे कैंपेन कर रही हैं। कैसे और कब आपको लगा कि ये जो एयर पोल्यूशन है वो इतना इम्पोर्टेंट इशू है और आपको इस पर काम करना चाहिए?
नाश जी, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, मैं बहुत ही आभारी हूँ, बिकॉज एयर पोल्यूशन एक ऐसा मुद्दा है जो हर जने को मालूम होना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत गहरी तरह से हम सबको अफेक्ट करता है। ये आपके इन अ वे सवाल का भी जवाब हो गया। मैं एक्चुअली फाइनेंशियल जर्नलिस्ट बहुत सालों से थी, 1990 से, और मैंने पहले स्टार्ट किया था अपना करियर द इकोनॉमिक टाइम्स से और फिर मैं डाउ जोन्स के लिए काम करने लगी। उसके बाद आई बिकेम अ मदर, मेरे दोनों बच्चे बहुत क्लोज अप टुगेदर पैदा हुए और मेरे हस्बैंड का जॉब हमको इंडिया से बाहर ले गया, तो मैं रहने लगी पालो आल्टो कैलिफोर्निया में, जहाँ पे आपको तो मालूम होगा, सारी दुनिया को मालूम है कि वहाँ पे क्लीन एयर और ब्लू स्काइज बिल्कुल एक आम चीज है। तो एक बार मैं वहाँ पे जब रहने लगी और फिर मैं दोबारा, एक्चुअली मेरे हस्बैंड एंड आई दोनों ने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम लोग अपने देश वापस आना चाहते हैं। हम चाहते थे हमारे बच्चे जो वहाँ पे पैदा हो रहे थे वो हमारी संस्कृति और अपना हेरिटेज और हमारे इंडियन कल्चर के बारे में इतनी अच्छी तरह से जानकारी नहीं ले पा रहे थे जितना वो यहाँ रह के एक इमर्सिव तरीके से उनको मिलती, जो मतलब अपने नाना नानी, दादा दादी और सारे एक्सटेंडेड फैमिली के द्वारा जो एक तरह से वो अब्सॉर्ब कर सकते हैं वो वहाँ पे नहीं हो पा रही थी। हम लोग वहाँ पे एक तरह से अकेले थे, बहुत से इंडियंस थे वहाँ पे जो वहाँ रहते थे लेकिन सब लोग अपनी लाइफ में काफी बिजी थे। तो हम लोग ने एक डिसीजन लिया, हमारे बच्चे 10 साल की उम्र से पहले हम उनको वापस लाना चाहते थे क्योंकि उसके बाद तो बच्चों की अपनी एक बोट आ जाती है। तो हम लोग ने सोचा कि हम वापस इंडिया आएंगे और उस टाइम मुझे यहाँ पे कितना प्रदूषण है हवा में इतनी मुझे जानकारी नहीं थी, थोड़ी बहुत जानकारी थी क्योंकि एज अ यंग जर्नलिस्ट में बहादुर शाह जफर मार्ग में मेरा ऑफिस होता था जहाँ पे आई थिंक इंडिया का सबसे पहला मॉनिटर और एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन की तरह एक मॉनिटर होता था जो हमें बताता था कि दिल्ली कितनी प्रदूषित है। 1990 की बात है और उस टाइम आई थिंक दिल्ली सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड था, पता तो चलता था। और इनफैक्ट अगर आप उस टाइम को जानते हो तो उस टाइम जो पोल्यूशन जो प्रदूषण था वो दिखाई देता था, क्योंकि सवेरे अगर मैं सफेद कपड़े पहन के घर से निकलती थी तो शाम तक वो कपड़े एक काइंड ऑफ ग्रेश ब्लैकिश हो जाते थे, क्योंकि जो पोल्यूशन था उनके जो कार्बन के पार्टिकल्स थे, डीजल वगैरह बहुत था, हमारे सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस वगैरह ऑटो रिक्शास सब डीजल के द्वारा चलती थी। डीजल वाज ऑलवेज अ चीपर फ्यूल, तो इस तरह से जो भी सस्ता फ्यूल था वो ही प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता रखने के लिए सब लोग वही यूज करते थे। सो टैक्सीज ऑटो रिक्शास बसेस सारे डीजल के, और तो जो डीजल के फ्यूम्स हैं वो तो आपने देखे होंगे वो कैसे काले काले
जी
फ्यूम्स निकलते हैं उनके टेल पाइप से, तो ये इस तरह का प्रदूषण था। तो एक्चुअली उस टाइम थोड़ा तो अंदाज था, लेकिन आई थिंक हमने इतना क्वेश्चन नहीं किया। ऑल्सो जब हम जवान होते हैं हम सोचते हैं यू नो द यंग ऑलवेज थिंक दे आर इमॉर्टल, तो हमें ये नहीं लगा कि
बिल्कुल
ये हमको अफेक्ट करेगा और हमने ज्यादा सोचा भी नहीं। बट जब मैं यूएस से वापस आई, दो छोटे बच्चे मेरे ऊपर पूरी तरह से निर्भर थे, तो उस टाइम एज अ मदर आपकी सोच बहुत फर्क फर्क हो जाती है, बिकॉज आप सोचने लगते हैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आप अपने बच्चों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। तो उस टाइम मैंने देखा कि इनके स्कूल के बच्चे, इनके जो दोस्त हैं, हर जना हर विंटर इतनी बीमारियां, सब लोग छींक रहे हैं, कोई इनहेलर्स यूज कर रहे हैं, कोई नेबुलाइजर्स एक बिल्कुल आम चीज हो गए थे जो मुझे याद नहीं थी अपने बचपन से। मतलब हमारे बचपन में भी कोई कोई लोगों को एस्मा होता था, लेकिन इतना ये नहीं था कि हर जना इनहेलर लेके घूम रहा है, हर जना नेबुलाइजर, छोटे छोटे बच्चे नेबुलाइजर्स यूज कर रहे हैं और स्टेरॉइड्स आम तरीके से बच्चों को प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज और मैंने सोचा कि ये क्या चीज है। पहले सोचा ये कोई वायरस होगा, क्या मैं बहुत फिरंगी हो गई हूँ कि मुझे अपनी देश की हवा से कुछ एलर्जी हो गई है। लेकिन मुझे भी इनफैक्ट जब मैं वापस आई उसके पहले विंटर में बहुत बुरी तरह से एक एस्मा टाइप का अटैक हुआ जो ठीक ही नहीं होके दे रहा था। बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, मुझे फिर भी ये नहीं ख्याल आया कि हवा में कुछ हो सकता है। फिर ऐसा हुआ कि एक दो और पेरेंट्स जो एक्चुअली एक्सपैट थे, अमेरिकन और यूरोपियन पेरेंट्स जो मेरे दोस्त बन गए थे वापस लौटकर, वो कहने लगे कि आप का क्या दिमाग खराब है कि आप छोटे बच्चों के साथ वापस इस देश में आए हैं, आपको जब चांस थी वहाँ रहने के लिए तो आपको मालूम नहीं है यहाँ की हवा कितनी प्रदूषित है। और आई वॉज शॉक्ड, ऐसे थोड़ा बहुत तो अंदाज था लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ मुझे तो हर चीज का अंदाज होता है। तो ये जो बचपन के दोस्त थे जो यहीं पे, क्योंकि मैं दिल्ली में ही पैदा पली बड़ी हुई, ज्यादातर मेरे फादर गवर्नमेंट में थे, तो दिल्ली बॉम्बे मेरठ और ज्यादातर इन्हीं सिटीज में हम बड़े हुए। तो मैंने सोचा, और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कह रहे हैं, वो उल्टा कह रहे थे, वो कह रहे थे आपको क्या हो गया है, आपके सारे फिरंगी फ्रेंड्स ये कहने लगे तो आप मान लोगे उनकी बात, आप फिरंगी खुद बन गए हो, आप 4-5 साल बाहर रहकर आप खुद पैरानॉइड हो गए हो, हवा हवा में कुछ नहीं है। तो मेरे को इतना मन में इतनी मैं दुविधा में पड़ गई कि ये क्या चीज है, मैं किसकी बात मानूं। फिर मैंने सोचा चलिए मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं इस बात के तक जाऊंगी। और मैंने उसी टाइम आई थिंक ये 2009-2010 की बात है, उसी टाइम इंटरनेट काफी प्रोलिफरेट कर, हाँ, तो उसमें यू नो इट वाज वेरी इजी टू फाइंड आउट, क्योंकि अब तो सबके लिए बहुत आसान है, आप गूगल से गूगल गुरु से कुछ भी पूछें वो सारी बातें आपको बता देते हैं।
2009-10 में उतना
उतना
मतलब
नहीं
लोग
था,
एयर पोल्यूशन को लेके तो इतना इंटरनेट पे भी नहीं था शायद,
इतना नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत था और धीरे धीरे वो बढ़ने
जी
लगा। सो 2014-15 तक आई वॉज कन्विंस, क्योंकि तब तक मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मिल गई थी और लोगों से भी मिल गई थी, क्योंकि तब तक मैंने और लोगों जो एक्चुअली पब्लिक हेल्थ रिसर्च में काम करते हैं या जो एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट थे उनको ढूंढ निकाल के उनसे भी पूछ पूछ कर ये सब मैंने पता लगा लिया कि इंडीड यू नो मेरे जो देशी दोस्त थे वो गलत हैं और जो मेरे एक्सपैट दोस्त थे वो सारे सही बात कह रहे हैं। भारत की हवा इंडीड बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है और दिल्ली की हवा तो एक तरह से जहरीली है। इनफैक्ट तब तक मैं एज अ जर्नलिस्ट मैंने स्टार्टअप्स पे मैं कॉलम लिखती थी कॉल्ड स्टार्टअप गिग्स। जब मुझे ये
अच्छा
पता चला कि ये हवा इतनी प्रदूषित है तो मैंने सोचा कि इस मुद्दे पर ही लिखना चाहिए और ऐसा राइटिंग ऑन दिस वॉज मोर मीनिंगफुल। मतलब किसी की मदद करना और लोगों को भी यही बताना, सिंप्लीफाई करना और एम्पलीफाई करना कि हमारी हवा ही जहरीली है, ये मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ मकसद ही बन गया कि ये छोड़िए बाकी सब चीजें तो हर जना देख सकता है, लेकिन ये पढ़कर लोग समझेंगे, अपने फैमिलीज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे हवा के लिए। इसलिए मैंने अपना बिल्कुल जो मेरा क्वालिफिकेशन था वो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट इकोनॉमिस्ट करके वो इन अ वे अबैंडन करके मैं एयर पोल्यूशन पर ही लिखने लगी। तो तब से आज तक मैं पोल्यूशन पर ही लिखती हूँ। और फिर क्या हुआ कि 2015 में हम सब ने मिलकर एक केयर फॉर एयर नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हम बस स्कूल्स, अस्पताल और RWAs में जा जा के लोगों को बताते थे कि देखिए हवा में क्या है। हम एक साइंटिफिक वे में बताते थे, हम सारी डेटा एविडेंस और इन बारों में जो जो हमने पढ़ा है हम वो बस उनके सामने रख देते थे और कहते थे अब आप बताइए कि हवा प्रदूषित है कि नहीं। एक मेरे जो कॉलीग थे जिन्होंने केयर फॉर एयर ज्वाइन किया वो एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, गोपाल शंकरन नारायणन उनका नाम था। उन्होंने कहा कि सिर्फ अवेयरनेस से नहीं होगा,
जी
हमें कोर्ट्स को यूज करना पड़ेगा, हमें एडवोकेसी करनी पड़ेगी। तो शुरू में तो हम लोग थोड़ा परेशान थे कि ये क्या, अभी कोर्ट्स में कौन कोर्ट कचहरी में जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं मैं करूंगा, और उन्होंने एक पेटिशन फाइल किया। उनका उसी टाइम एक नन्ना सा बेबी उनके घर में हुआ था, अर्जुन गोपाल उसका नाम था, और 3 लॉयर्स ने अपने टॉडलर्स के बिहाफ पे एक पिटिशन फाइल किया सुप्रीम
वाह
कोर्ट। और उन्होंने उस पिटिशन में कहा कि गिव अस अ फंडामेंटल राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर। हम छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हमारे लंग्स अभी फॉर्म भी नहीं हुए हैं और हमें इतनी जहरीली हवा ब्रीथ करनी पड़ रही है कि हमारे लंग्स बचपन से ही डैमेज हो जाएंगे। और उन्होंने सारे रीजंस भी दिए कि ये रीजंस हैं, क्रॉप्स डबल बर्निंग एक रीजन था, गार्बेज बर्निंग ये सब हैं, और फायर क्रैकर्स। और चालू इन्होंने इसी मुद्दे से किया कि कम से कम फायर क्रैकर्स तो बैन कर दीजिए क्योंकि इससे 2 दिन में जितना पोल्यूशन, 2-3-4 दिन में जितना पोल्यूशन होता है उससे
जी
तो हम ब्रीद ही नहीं कर पाते। तो कोर्ट ने फॉर्चुनेटली उस मुद्दे को लेकर पहले साल में उन्होंने सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फायर क्रैकर्स को बैन किया था, और फिर दूसरे साल में मैन्युफैक्चर को भी बैन कर दिया था और कहा सिर्फ ग्रीन फायर क्रैकर्स होंगे। खैर ये अलग बात है कि ग्रीन फायर क्रैकर्स कुछ होता ही नहीं है क्योंकि
जी
जो भी कुछ जलता है वो एक तरह से प्रदूषण फैलाता है, बट वो हम बात अलग छोड़ के कम
जी
से कम इस मुद्दे पर कुछ अटेंशन आया और एक एक तरह से ये बात लोग इसके बारे में बात करने लगे। फिर धीरे धीरे मैंने देखा 2015 और 2017-18 के बीच काफी लोग जो पहले हमारी बात नहीं सुनते थे और मेरी ही तरह डिनायल में थे वो लोग भी आगे आके कहने लगे हाँ एक्चुअली मैंने भी देखा है कि हम लोग सर्दियों में बीमार पड़ते हैं, एक बार जुकाम सर्दी हो जाता
जी
है तो वो कॉफ पूरे साल चलता है, पूरे विंटर्स चलता है वगैरह वगैरह। और मैंने ये भी नोटिस किया कि मेरे खुद के पेरेंट्स को बार बार, एक बार मेरी मदर को सर्दी में जुकाम हो जाता था, खांसी हो जाती थी, फिर वो
जी
पूरी सर्दियां चलती थी। तो मैंने अपने ही घर में एयर प्योरीफायर यूज करना शुरू किया सिर्फ रात को, क्योंकि एक तो ये चीजें इतनी महंगी होती हैं, फिर दिखता नहीं कि जो हवा पहले और बाद में एयर प्योरीफायर में आप जिस कमरे में प्योरीफायर लगाएं पता तो चलता नहीं, दिखने में तो कुछ आता नहीं, बस
जी
आपको लगता है
जी
कि हमारी हवा साफ शायद हो रही है। तो थोड़ा मतलब स्केप्टिकली मैंने लगाया बट मुझे एकदम लगा कि इसमें फायदा बहुत हो रहा है। तो मैंने
जी
आई लिटरली फोर्स्ड माई पेरेंट्स ऑल्सो कि आप भी यूज करिए, और वो यूज नहीं करना चाहते थे, वो कह रहे थे कि क्या तुम अजीब और गरीब चीजें लाके हमें दे देते हो, बट
जी
उनको फायदा हुआ। मेरी मदर को पहले ही विंटर उन्होंने देखा कि उनका सर्दी जुकाम और जो खांसी उनको होती थी वो थोड़ी कम हुई, तो वो भी मानने लगे कि इसमें कुछ है। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि जब तक लोगों को अपने आप एक्सपीरियंस ये चीज नहीं करते तो आप कितना भी उनको फिगर्स दीजिए, नंबर्स दीजिए,
जी
साइंस उन पर दिखाइए, वो असल में कोई समझ नहीं पाता कि ये कितनी, क्योंकि ये इतनी इनविजिबल किलर है, ये
बिल्कुल
मतलब अदृश्य है, ये हमको दिखता नहीं कि ये जो इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं PM 2.5 के, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये किसी को दिखते नहीं, ये हमारे लंग्स में चले जाते हैं, हमारे हमारा ब्लड इनको अब्जॉर्ब कर लेता है और सारे हमारे ऑर्गन्स में ये PM 2.5 घुस के बैठ जाता है और उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है थ्रू इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, लेकिन हमें दिखते नहीं तो हमें नहीं लगता कि भाई कुछ हो रहा है। देखिए कोविड में क्या होता है आपको मालूम है, चाहे आपको कोविड का वायरस नहीं दिखता लेकिन कॉज एंड इफेक्ट बहुत इमीडिएट है। आपको कोरोना वायरस पे आप एक्सपोज हुए, आपको एक बीमारी हुई और
जी
डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट है। बट एयर पोल्यूशन में ये बात है कि ये क्यूम्युलेटिव और इरिवर्सिबल है तो, लेकिन ये एकदम रिएक्ट नहीं करता। जो शॉर्ट टर्म आपको आंखें वाटर कर रही हैं, सर दर्द हो रहा है, वो तो एक टेम्पररी चीज है। जो असल में जो किलर है वो है जो ये आपके अंदर बैठ जाता है और जो
बिल्कुल
क्यूम्युलेटिवली बढ़ता रहता है और सालों के बाद ये निकल के आता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे अल्जाइमर्स हो, चाहे डिमेंशिया हो, चाहे किसी को स्ट्रोक, बीपी, डायबिटीज, मतलब कोई इस पर दे कांट पुट अ फिंगर ऑन इट कि हाँ हमको ये PM 2.5 से ही हुआ होगा, क्योंकि दीज आर ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इसलिए ये प्रॉब्लम अभी भी मोस्टली अदृश्य रहती है, लोग समझ नहीं
बिल्कुल
पाते कि ये है। मेरी अपनी मदर को लंग कैंसर का डायग्नोसिस मिला, इनफैक्ट दिवाली का ही दिन था और हम लोग थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर हमारी, वी थॉट कि एटलीस्ट थोड़ा तो पॉजिटिव स्टेप है। और उसी दिन मुझे मालूम पड़ा कि मेरी मदर को स्टेज 4 लंग कैंसर है, और इतना धक्का लगा क्योंकि वो नॉन स्मोकर थी, वो म्यूजिशियन थी, वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, मैं एमए था और वो म्यूजिक की बिल्कुल मतलब अधीन थी। उनका दिन नहीं शुरू होता था विदाउट उनके जो राग उनके साथ जो स्टार्ट
जी
होते, तो हम सबको बहुत धक्का लगा। मैं बार बार डॉक्टरों से यही पूछती रही कि इनको क्यों, हमारी फैमिली में तो किसी को लंग कैंसर की बीमारी नहीं है, ना हमारे पूर्वजों को। एंड जिस डॉक्टर जो उनको देख रहे थे, उन्होंने मुझे मेरी तरफ देखा और बोला, बट आप तो कह रही थी आप एवोल्यूशन में काम करती हैं, आपको नहीं मालूम कि इनको
हाँ
क्यों ऐसे हो गया है। तब मुझे इतना धक्का लगा कि देखिए मेरे दिमाग में ये सब, आई हैड द इंटेलेक्चुअल नॉलेज, बट जब ये बात अपने अपने किसी करीब जिसको हम प्यार करते हैं उनके पास, उनके साथ ये चीज होती है, तो जो दिल में जो धक्का लगता है वो,
बिल्कुल
देन आई एक्सपीरियंस दैट, देन आई रियलाइज कि ये इसके बारे में, खैर उस टाइम तो व्हेन माय मदर पास्ड अवे मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, बट बाद में मैंने सोचा कि इसके बारे में लिखना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो किसी और देश में किसी और के साथ हो रही है, ये हमारे देश में, हमारे बैकयार्ड में, हमारे करीब करीबी जिन जो हमारी फैमिली है उनके साथ हो रही है, हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो
बिल्कुल
इसी की वजह से देन आई स्टार्टेड राइटिंग अ बुक ऑन इट, एंड
या
आई होप वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाए और भी तमिल और भाषाओं में भी ट्रांसलेट हो जाए ताकि लोग पढ़ पाए कि एयर पोल्यूशन
बिल्कुल
कितनी खतरनाक चीज है।
नहीं बिल्कुल। और जो आप कह रही, इनविजिबल हो जाता है, दूसरा इतना इनविजिबल हो जाता है और इतना यूज्ड टू हो जाते हैं हम कि शायद जैसे आपने बताया कि जब आपने अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाया तो आपके पेरेंट्स को पता चला कि ये जो क्लीन एयर है उसका क्या वैल्यू है, क्योंकि हम सब जो दिल्ली में इतने सालों से लोग रह रहे हैं उनको क्लीन एयर का जो वैल्यू है वही समझ में अब नहीं आता, क्योंकि हम पॉल्यूटेड एयर को लेके इतना यूज्ड टू हो गए हैं। दूसरा, आपने आपने अपनी किताब के बारे में बताया ऑलरेडी, उसमें आपने बेहद जो अपने आपके प्राइवेट लिव्ड एक्सपीरियंस हैं उसको आपने शेयर किया है, और फिर आपने रिसर्च पे भी बात की है उस किताब में, तो क्यों लगा कि ये किताब लिखनी चाहिए, और क्यों लग रहा है आपको कि ऐसी किताबें जरूरी है और दूसरी भाषाओं में भी जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी जरूरी है?
देखिए एयर पोल्यूशन एक तरह से बहुत जटिल समस्या है और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, अगर कोई चीज गंदी है या प्रदूषित है या जहरीली है तो उसको हटाना है। बट दोनों चीजें इसको समझना बहुत, क्योंकि इसकी जो साइंस है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो जब तक लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या चीज है जो उनको मार रही है, तब तक वो अपनी आवाज कैसे उठाएंगे। तो एज अ जर्नलिस्ट एंड कम्युनिकेटर मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा स्किल सेट क्या है, मैं ना इस पे रिसर्च कर सकती हूँ, ना मैं इसका क्योर कर सकती हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ, ना तो मैं कम्युनिकेटर हूँ। तो अगर मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ इसकी, इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ और एम्पलीफाई कर सकती हूँ और छोटे छोटे पीसेस में लोगों को समझा सकती हूँ, तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू। मैं इसके अलावा क्या
बिल्कुल
कर सकती हूँ? तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस, बिकॉज देखिए ह्यूमन बींग्स एंगेज मोस्ट विद स्टोरीज। हम बचपन से अपनी नानी दादी माँ के गोद में, हमें कहानियों से ही हम पले बड़े होते हैं, सब ह्यूमन बींग्स। किसी भी देश की आप देख लीजिए, अपनी कहानियाँ होती हैं, अपनी संस्कृति में भी कहानियाँ होती हैं। हमारे देश में महाभारत रामायण है, वेस्टर्न कंट्रीज में ओडिसिस होमर, मतलब सब क्लासिक्स भी कहानियों के
जी
द्वारा लोग हमें
बिल्कुल
समझाते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। तो मैंने सोचा कि अपनी तरह से मैं भी अपनी कहानी, जो एक बहुत स्पेसिफिक कहानी है बट ऑल्सो एक बहुत यूनिवर्सल कहानी है, ये मेरी मदर के साथ हुआ लेकिन ये किसी और की मदर के साथ भी हो सकता है, किसी और के अंकल आंटी, किसी और के बच्चों के साथ हो सकता है। और अब तो हमें पता चल गया है, जैसे एक डॉक्टर हैं जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया एक 28 साल की युवती लंग कैंसर से, जो एयर पोल्यूशन के द्वारा उनको हुआ, उनके बारे में लिखा गया है। आई थिंक अल जजीरा ने एक स्टोरी करी थी।
जी
तो
जी
ये जरूरी नहीं है, मेरी मदर तो फिर भी शी वॉज 80, बट ये 28 ईयर ओल्ड हैं। कितने लोग हैं, एक 16 साल का युवक, उसके बारे में मैंने रिसर्च में देखा कि ही इज द यंगेस्ट टू हैव डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक दैट वाज ट्रिगर्ड बाय एयर पोल्यूशन। ये श्री जयदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज बैंगलोर ने इस पर रिसर्च करी है। लोग जो भी सुन रहे हैं वो अपने आप से चेक कर
जी
सकते हैं। तो ये हम नहीं चाहते कि हमारे देश के यंग लोग, यू नो द यंग आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, हम अपने फ्यूचर को ही अगर पहले से जहर देकर किसी तरह से हम उनको पॉइजन कर रहे हैं तो उनका फ्यूचर ही क्या रहा। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टोरीज के द्वारा ये लोगों को बताया जाए, चाहे वो स्टोरीज हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो म्यूजिक हो, इसके द्वारा ही लोगों को पता चल पाएगा। क्योंकि अगर आप साइंस उनके सामने रख देंगे तो एक वो बहुत ड्राई चीज हो जाती है, कोई नहीं देखना चाहता, किसी के पास टाइम नहीं है। आजकल तो लोगों के पास अटेंशन भी नहीं है, तो मतलब लोग जब पढ़ते ही 280 कैरेक्टर्स में है तो फिर आप उनको कहाँ से साइंस के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव टू मेक इट एंगेजिंग। तो मैंने सोचा कि इस तरह से कि जब स्पेसिफिक स्टोरीज हैं, जब आप मुझे अपने फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे तो मैं ध्यान से सुनूंगी, लेकिन अगर आप मुझे बताना शुरू करेंगे कि देखिए ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं या एयर पोल्यूशन से इतने लोगों की वन पॉइंट,
बिल्कुल
तो मेरा तो माइंड स्विच ऑफ कर जाएगा, यू नो। तो इसलिए मैंने सोचा कि किस तरह से किया जाए कि इस पूरे मुद्दे को हम एक पैकेज ऐसे करें कि वो एंगेजिंग हो लेकिन अंदर घुसा दें सारी जो इंफॉर्मेशन हो। तो बुक में मैंने बहुत साइंटिफिक पेपर्स साइट किए हैं, आपको तो खुद मालूम है कि देर आर एटलीस्ट 70,000 साइंटिफिक पेपर्स दैट लिंक एयर पोल्यूशन टू हेल्थ हार्म। तो अब
बिल्कुल
मैं 70,000 पेपर तो मैं साइट नहीं कर पाई क्योंकि आई वॉन्टेड टू कीप इट सिंपल, बट जिस तरह से मैंने लर्न किया, बिकॉज मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस रेप्लीकेट करने की कोशिश की। मैं भी एक एवरेज सिटीजन थी जो एयर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी पेरिफेरली, कैसे मैंने समझा, फिर मेरा भी डिनायल कि मैं क्या इस देश में वापस आई, मैंने मतलब क्या गलत डिसीजन ले लिया अपना, आई वॉज इन डिनायल। तो मैं कहती रही नहीं नहीं इतना खराब नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, मुझे पहले अगर पता होता तो शायद मैं वापस ही नहीं आती। अपना डिनायल वगैरह देख के मैंने देखा है, जब मैं लोगों को बताती हूँ बहुत से लोग हैं जो आर्ग्यू करेंगे और कहेंगे कि नहीं ये ऐसी बात नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है, रूरल इंडिया में इतना नहीं है। तो ये सारी मिथ्स भी हमें देखनी पड़ती हैं
मतलब द
बहुत।
फैक्ट इज कि रूरल इंडिया में कोई मॉनिटर ही नहीं है एयर क्वालिटी
एग्जैक्टली
का।
एक तो मॉनिटर्स ने, अगर जितने मॉनिटर्स होंगे आप देखेंगे रूरल इंडिया में भी, और दूसरी बात रूरल इंडिया में हो सकता है उनके जो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है वो फर्क हो सकते हैं, वहां पे शायद व्हीकुलर पोल्यूशन शायद कम हो, लेकिन
जी
वहां पे जो बायोमास बर्निंग है, जिस तरह से दिन में 3 बार खाना पकाया जाता है, अब तो खैर थैंक्स टू द उज्ज्वला स्कीम थोड़ा सा बेटर हुआ है, लेकिन जब मैं अपनी मदर की एशेस को सबमर्ज करके आई थी उधर हरिद्वार में लौटते वक्त मुझे यही बार बार ख्याल आ रहा था कि दूर दूर तक हमें धुआं ही धुआं दिख रहा था. यू नो, आप ये मूवीज में देखते हैं तो वो बहुत रोमांटिक दिखता है, एक हेज दिखती है, इतना एक जब सब कुछ ब्लरी दिखता है, इतना वो रोमांस एक दिखता है डिस्टेंस में. लेकिन अब मैं जान गई कि वो जो हेज है वो जहर है. तो ये चीज इवन विलेजेस में, हमारे विलेजेस में लोग नहीं जानते कि आप तीन बार जब आप, और स्पेशली काउडंग जिसमें आप जो स्मोल्डर करता है ना, जिस जो गीला होता
जी
है, तो उससे ज्यादा धुआं निकलता है, तो उससे एयर पोल्यूशन भी ज्यादा होता है. और सबसे ज्यादा विमेन एंड चिल्ड्रन किचन में, माएं जाती हैं, वो सुबह से खाना पकाती हैं, 3 टाइम उनके साथ उनके बच्चे होते हैं, तो समझिए कितना खराब वो शुरू से क्या हवा ब्रीद कर रहे
बिल्कुल,
हैं.
आप जब बात करते हैं एयर पोल्यूशन का, जब भी मीडिया या जब जहां भी बात होती है, तो लोग अक्सर जो बोलते हैं कि दिल्ली की हवा खराब है। जब हम बात करते हैं कि दिल्ली में अगर स्टेबल बर्निंग से हवा खराब हो रही है, तो हम शायद ये भूल जाते हैं कि जहाँ पे ये स्टेबल बर्निंग रियली हो रहा है ग्राउंड पे, वहाँ की हवा कितनी खराब होगी,
बिल्कुल
और वहाँ पे हवा खराब करके आप इस शहर तक हवा पहुँचती है।
बिल्कुल
तो मतलब ये जो पूरा रूरल इलाके का जो का जो एयर पोल्यूशन क्राइसिस है, उस पे बहुत ही कम बात हो पाता है। दूसरा, आपने जो कहा कि लिव्ड एक्सपीरियंस को शेयर करना और उससे पर्सनलाइज करना, वो भी मुझे बहुत सही बात लग रहा है, क्योंकि अक्सर हम ये डेटा देखते हैं कि 1 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स हो रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, या फिर 12 लाख चिल्ड्रेंस जो हैं वो अस्थमा के साथ रहने को मजबूर हैं। लेकिन हम जब ये डेटा साइट कर रहे होते हैं, ये रिसर्च पेपर साइट कर रहे होते हैं, तो अक्सर भूल जाते हैं कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। अगर 10 लाख लोग मर रहे हैं, तो 10 लाख जिंदा लोग थे जो मर रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से।
बिल्कुल
अगर 12 लाख बच्चे अस्थमा के शिकार हैं, इसका मतलब 12 लाख जिंदा सांसें हैं जो हर रोज सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। तो उसको कैसे ह्यूमन एंगल से देखा जाए। अभी मैं देख रहा था, जब ये लंदन में पहली बार एक कोर्ट ने एयर पोल्यूशन से एक बच्ची के डेथ को लीगली एक्सेप्ट किया कि हाँ ये एयर पोल्यूशन की वजह से हुआ है, तो काफी लोगों ने उस पर चर्चा किया। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में कैसे हम ये जो डेटा है, ये जो नंबर्स है, उसको हम कैसे ह्यूमनाइज कर सकते हैं?
एक तरीका तो ये है कि जैसे हम अपनी अपनी स्टोरीज शेयर करें. तो जैसे जो लोग प्रदूषित हवा को ब्रीद करके जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हो चाहे वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो, वो आएं और उसके बारे में बात करें, चाहे प्रेस में, मीडिया में, जैसे भी एक दूसरे से बात करें. बट मैं तो ये भी कहूँगी, जो लोग कहते हैं कि ये सब नंबर्स हैं, या जो लोग डिनाई करते हैं, उनको ले जाना चाहिए जो हमारे ICUs हैं, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे
बिल्कुल
नेब्यूलाइज हो रहे हैं, जो क्योंकि मुझे, मैं बता तो रही हूँ, जब मैंने अपनी मदर को देखा स्ट्रगलिंग टू ब्रीद, ब्रीदिंग इज एन इनवॉलंटरी एक्टिविटी. आप बिना खाने के रह सकते हैं काफी दिन, पानी के भी, बिना पानी के भी रह सकते हैं. आई थिंक दे से 3 डेज विदाउट वाटर यू कैन स्टे अलाइव, बट यू कांट इवन स्टे अलाइव फॉर 3 मिनट्स विदाउट ब्रीदिंग एयर.
ब्रीथिंग
तो इट्स एन इनवॉलंटरी एक्टिविटी. और जब मैंने देखा जिस तरह से मेरी मदर कैसे स्ट्रगल करती थी ब्रीद करने के लिए, वो उनको बाईपैप लग गया था, और फिर उसको देखकर मुझे लगा ये तो बिल्कुल एक तरह से दिस इज ऑलमोस्ट क्रिमिनल. जिस तरह से, मतलब ऐसे क्या हम लोग सब ऐसे ही मरने वाले हैं? और ये तो एक चीज है जो हम देख सकते थे, जिन लोगों को सडन हार्ट अटैक हो जाता है दिवाली के बाद. आप देखिए, अगर आप नंबर्स देखेंगे, अगर हमारे अस्पताल सारे नंबर्स सही से लिखते, द नंबर ऑफ डेथ्स आफ्टर एनी एपिसोडिक एयर पोल्यूशन इवेंट, चाहे वो दिवाली और क्रॉप स्टबल बर्निंग हो, चाहे कुछ और हो, नॉर्मली तो नॉर्थ इंडिया में यही ज्यादा उस टाइम सबसे ज्यादा हवा प्रदूषित होती है. पर उसके बाद जब आप हॉस्पिटल एडमिशंस एंड डेथ्स देखेंगे, देयर इज अ शार्प स्पाइक इन दोज. और वो एक एक जान ऐसी जान है जो बच सकती थी, वो किसी
बिल्कुल
के माँ थी, किसी के
सही,
बाप थे, किसी के अंकल थे, किसी के बच्चे थे, जो इस तरह से. तो इन पर कहानियां लिखना, इन पर म्यूजिक बनाना, मूवीज बनाना, हमारे देश में बॉलीवुड की तरफ सब देखते हैं. कोई एक मूवी भी अगर बॉलीवुड बना दे जो हमारी प्रदूषित हवा पर फोकस करें, और मैं ये नहीं कह रही कि पूरी कहानी ही आप एयर पोल्यूशन पे बनाएं, बट कम से कम आप मेंशन करिए हमारे जब क्रिकेटर्स, जब हम क्रिकेट इज अनदर वेरी पॉपुलर मीडियम, जब हमारे क्रिकेटर्स खेलते हैं, आपको पता होगा पिछले साल भी खेलते खेलते वो हमारे इतने स्ट्रॉन्ग यंग क्रिकेटर्स दे स्टार्टेड फीलिंग नॉजियस. 2-3 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि आई थिंक श्रीलंका के क्रिकेटर थे जो इतनी प्रदूषित हवा में, हाँ, और उस टाइम इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ जोक ऑफ इट एंड सेइंग वो इतनी हवा में नहीं खेल सकते, यू नो, यहाँ पे एक और मिथ आती है, द डिफरेंस बिटवीन इम्यूनिटी एंड एंड्योरेंस. अगर आप जोक करें कि अच्छा उनके प्लेयर्स में इतनी इम्यूनिटी नहीं थी, हमारा तो देखिए फौलादी हमारे लंग्स है, ये तो गलत बात है. हमारे लंग्स एंड्योरेंस है, लंग्स तो भगवान ने हमको दो दिए हैं, जबकि एक लंग से भी आदमी चल सकता है. तो जब तक हमारे लंग्स बिल्कुल ही खत्म नहीं हो जाते, हमारा शरीर डज नॉट गिव अप ऑन अस. तो कहने का मतलब ये है कि ये एक मिथ है कि हमारी इम्यूनिटी ज्यादा है, इनफैक्ट हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है. अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ती प्रदूषित हवा ब्रीद करने से, तो क्या स्मोकर्स की इम्यूनिटी ज्यादा नहीं होती? ये सोचिए, सिंपल सी बात है. हमारे देश में एवरी न्यू बॉर्न फ्रॉम द टाइम इट इज बॉर्न वो इज अ स्मोकर, क्योंकि हमारी हवा ही स्मोकर की हवा की तरह है. यू नो, इट इज लाइक स्मोकिंग एवरी टाइम यू आर ब्रीदिंग द एयर. कहने का मतलब फिर यही है कि जो हमारे मिथ्स हैं, इनको भी हम हमारा कर्तव्य है कि हमें इन मिथ्स को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए. जैसे एक और मिथ है, मैं आपको बताती हूँ. बहुत से लोग, मेरे खुद के फादर, वो कहते थे नहीं मैं तो भाई प्राणायाम करता हूँ, मैं तो बाहर बैठ के नीम के पेड़ के नीचे प्राणायाम करता हूँ. और मैं उनसे इतना बोलती थी, यू नो, जब आप जवान थे, जब आपने प्राणायाम करना शुरू किया उस टाइम ठीक था, क्योंकि उस टाइम बाहर की हवा इतनी प्रदूषित नहीं थी, नीम के पेड़ के नीचे बैठना प्राणायाम करना बहुत अच्छी बात थी. लेकिन आज अगर आप वो कर रहे हैं तो आप, यू आर मेकिंग योर लंग्स वर्स, क्योंकि आप बाहर बैठ रहे हैं जहाँ पे PM 2.5 इतना हाई है. यू नो, चाहे आप नीम के पेड़ के नीचे बैठें, चाहे किसी भी पेड़ के नीचे बैठें, हवा तो बाहर इतनी प्रदूषित है. आप घर के अंदर बैठ के अपना प्योरीफायर ऑन करके प्राणायाम करें तो फिर भी शायद आपके लंग्स स्ट्रेंथन हो जाएंगे. दूसरी बात, मुझे बहुत पसंद था अगरबत्ती जलाना, मुझे इतना अच्छा लगता था उसकी, यू नो, भीनी भीनी जो स्मेल आती है, इतना एक वन फील्स वेरी गुड. बट मैंने देखा, क्योंकि मैंने अपने घर में लो कॉस्ट मॉनिटर के साथ टेस्ट किया है, कि जितनी प्रदूषण उससे बढ़ता है, चाहे वो मस्कीटो रिपेलेंट, मतलब हम जो मस्कीटो का वो जलाते हैं कॉइल, या इंसेंस हो, चाहे इवन खाना जब आप पूरियां तलते हैं वगैरह, तो घर का एयर पोल्यूशन भी आपका बहुत हो सकता है. अगर आपका वेंटिलेशन सही नहीं है तो घर का भी एयर पोल्यूशन बहुत खराब हो सकता है. और हमको बस अवेयर रहना है. आप, मैं ये नहीं कह रही आप पूरियां मत तलिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि अगर आप पूरियां तल रहे हैं तो आप अपना वेंटिलेशन, एटलीस्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द एक्सपोजर, बट द मेन थिंग इज to stop and to reduce air pollution, we have to reduce emissions. Emissions तो कम होने ही हैं, हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम emissions at source नहीं कम करेंगे, तब तक हम air pollution कम कर ही नहीं सकते.
तो उसमें मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, तो क्या वो emissions जो हैं, वो क्या सिर्फ वो stubble burning को रोकने से होगा, या फिर और भी वजहें हैं जिसकी वजह से? क्योंकि जब भी मैं देखता हूं, या हम सब लोग, या कॉमन परसेप्शन यही है कि सिर्फ स्टेबल बर्निंग की वजह से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, और ये एक लॉन्ग डिबेट भी है. लेकिन आप जब देखेंगे दिल्ली का एवरेज, दिल्ली या कोई भी किसी भी शहर का एवरेज एयर क्वालिटी, एनुअल एयर क्वालिटी, कभी भी आपको वो खराब ही मिलेगा. तो क्या क्या रीजन है जिसपे काम करने की ज़रूरत है?
आई थिंक सबसे ज़रूरी तो ये है कि जो हम कोल और फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, इसका हम यूज़ धीरे धीरे कम करते जाएं, और धीरे धीरे भी नहीं, इनफैक्ट एम्बिशियसली हमें कम करना होगा. और हमको रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो मोबिलिटी के लिए हो, चाहे वो एनर्जी के लिए हो, हमको जल्दी से जल्दी वो स्वैप करना होगा. तो क्योंकि कोल एंड फॉसिल फ्यूल से जो एमिशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है हमारे शरीर के लिए. और आप ये सोचिए, जो प्रदूषण एक इनइक्विटी भी है, क्योंकि आप कहेंगे कि अच्छा इनका लाइवलीहुड क्या होगा इनका, मैं ये कह रही हूँ कि आई थिंक अगर हम प्लानिंग सही से करें तो हमें जो ये इन इंडस्ट्रीज को हमें सनसेट इंडस्ट्रीज डिनोट करना पड़ेगा, ये हमें ख़त्म करनी है. और इनके जो वर्कर्स हैं उनको रिट्रेन करके, आप जितने मैंने तो ये पढ़ा है कि एक जॉब जो कोल में आता है उसकी जगह अगर आप उसको स्विच करके रिन्यूएबल एनर्जी में करें तो 4 जॉब्स मिलेंगे आपको। तो जो ये लोग कहते हैं कि अरे लाइवलीहुड, आप लाइव्स की बात कर रहे हैं, लाइवलीहुड्स का क्या होगा, उनके लिए जवाब ये है कि लाइवलीहुड्स तो ज्यादा रिन्यूएबल में है
और
एनीवे टू
जिस तरह
कम
की
बैक।
लाइवलीहुड्स कोल माइनिंग में है, मतलब
हाँ
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है इन इलाकों में
हाँ
जाने का, देखने का, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हम लोग, ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन हमें भी उतना ही इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन जो लोग इन माइनिंग में काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ के इश्यूज तो बहुत ही सेवियर
बाप
है।
रे, मुझे तो सोच के भी डर
और
लगता है क्योंकि उनके लंग्स का रंग क्या होगा मुझे, मैं जानती हूँ सिर्फ काला होगा, क्योंकि वो माइन करते हैं तो पहले तो एक रॉ फॉर्म में उनके लंग्स में जा रहा है, फिर बाकी पोल्यूशन तो कहीं कम है नहीं, तो फिर वो घर जाते हैं तो वहां पे भी पोल्यूशन, मतलब हर जगह। तभी तो मैं कह रही हूँ कि ये जो मिथ है कि ये दिल्ली की प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये जहाँ पे हमारे कोल माइंस लगे हैं वहाँ पे ज्यादा मॉनिटर्स लगाए, आपको पता चलेगा एक्चुअली द मोस्ट पोल्यूटेड प्लेसेस आर नियर द कोल माइंस ओनली। पोल्यूशन के बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, कम से कम 10-12 हैं, बट जो मेन है वो एक तो ये जो ये इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे
हाँ,
पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, इनफैक्ट फैशन इज अनदर वेरी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, वेहिक्यूलर पोल्यूशन तो है ही। बहुत से लोग कहते हैं, जैसे हमने ऑड इवन किया था इधर दिल्ली सरकार ने, ऑड इवन का तो कोई फायदा था नहीं क्योंकि सारे जो सबसे पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, जो 2 व्हीलर्स हैं, जो 2 स्ट्रोक इंजन और सस्ता और कच्चा तेल यूज करते हैं, उनको तो अलाउ कर दिया था। और जो गाड़ियां वगैरह हैं वो भी पोल्यूटिंग हैं, जो जो डीजल वगैरह की थी पर। तो वी हैव टू स्विच टू इलेक्ट्रिक एज सून एज वी कैन, स्टार्टिंग विद द स्कूटर्स एंड 2 व्हीलर्स, एंड गवर्नमेंट शुड गिव सम इंसेंटिव्स, जो सब सब्सिडीज हैं इनको देनी चाहिए। आप सस्ते से सस्ते, आजकल आप देखिए हर जना डिलीवरी चाहता है, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी वगैरह,
बिल्कुल
ये सारे जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से, और पैसे वो बना रहे हैं, लेकिन जो ये हवा प्रदूषित हो रही है वो सब हमारे लंग्स में जा रही है। ये एक्सटर्नैलिटी एक है जिसकी वजह से हम पोल्यूशन पर इतना इम्पैक्ट हमारा नहीं हो पा रहा है, बिकॉज प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड एंड पुट इन द प्राइवेट पॉकेट एंड द पोल्यूशन इज फेल्ट बाय ऑल ऑफ अस इन द पब्लिक। फिर बाकी गार्बेज, अगर हमारे सिविक बॉडीज अपना काम सही कर रही होती तो हर घर में सेग्रीगेशन होता। मैंने अपने घर में 4-5 साल पहले कंपोस्टिंग शुरू करी, द अमाउंट, मेरे घर से कूड़ा ही नहीं निकलता है क्योंकि सारा जो वेट वेस्ट है वो कंपोस्ट बन जाता है, जो
जी
ड्राई वेस्ट है, जो जैसे ये आपका कार्डबोर्ड आया है, न्यूज़पेपर आया है, वो कबाड़ी वाला ले जाता है। तो इतना कम कूड़ा निकलता है, और पिछले 4-5 सालों से मैं देख रही हूँ और मैं सोचती हूँ अगर एक घर में इतना बचाव हो रहा है तो समझिए अगर हमारे सारे घर ऐसे करते, क्यों करेंगे? मैं अपने नेबर को भी नहीं कह सकती, दिस हैज टू बी डन बाय लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कोई ना करे तब उन पर फाइन होना चाहिए कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, जब ये इतनी सिंपल बात है। लेकिन सरकार खुद ही अपना ये काम ठीक से नहीं करे, जो सेग्रीगेट भी करता है वो सारा मिक्स हो जाता है जब कूड़े वाला लेने आता है, और फिर वो जाता है हमारी लैंडफिल्स में। लैंडफिल्स तो आप जानते हैं हमारे ताजमहल और कुतुब मीनार से भी ऊंची ऊंची
हाँ,
हैं, और फिर वो
वो
नीचे
एक
से जो एक बार जलने लगती हैं तो फिर वहां पे भी कूड़ा मतलब जल रहा होता है।
बिल्कुल
फिर सर्दियों में नॉर्दर्न इंडिया में सब लोग थोड़ा कोई टायर चला रहा है अपने को गर्म रखने के लिए, इनको हम कैसे मना करें? जो लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, हम उनको कैसे मना करें कि आप अपने को वार्म मत रखिए?
जब आपने इशारा किया, वो थोड़ा सा मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा कि किस तरह से दो चीज़ें हैं। एक तो जो एयर पोल्यूशन का इशू है वो एक जस्टिस का भी इशू है कि शहर
बिल्कुल
में जो सबसे मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन, चूंकि वो ऑब्वियसली स्ट्रीट पे काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा आउटडोर में होते हैं, दे कांट अफोर्ड द एयर प्यूरिफायर और ये सब चीज़ें, तो उस पर उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। दूसरा, जो आपने कहा कि उनके पास घर ही नहीं है, उनके पास एनर्जी का एक्सेस नहीं है, तो वो कोयला जला के, ये कोयला जला के कभी गर्म करते हैं, कभी लकड़ी जला के गर्म करते हैं। तो ये जस्टिस के, इकोनॉमिक और जो सोशल जस्टिस है उसके लेंस से भी देखना चाहिए। दूसरा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात कह रहा था, जैसे आप कह रहे थे कि दिल्ली की हवा सिर्फ खराब नहीं है, मुझे इससे एक पर्सनल किस्सा याद आया कि मैं पिछले साल अपनी माँ के साथ पटना में, मैं पटना का हूँ, और पटना में हम लोग ऐसे पार्क में मैं अपनी माँ के साथ घूम रहा था, और बहुत ही हैवी एयर पोल्यूशन होगा शायद दिल्ली से भी ज़्यादा उस वक्त वहाँ पे। मतलब हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ ये पॉल्यूशन है, तो मेरी माँ बोली नहीं नहीं ये तो स्मॉग है, दिल्ली में पॉल्यूशन पॉल्यूशन होता है, यहाँ कहाँ पॉल्यूशन है, तो ये फॉग है, स्मॉग नहीं है, दिल्ली में होता है वो, टीवी में नहीं देखा न्यूज में कि कितना खराब है दिल्ली का, तुमको सब जगह अब दिल्ली तो मुझे लगा कि ये कितना मीडिया कैसे इसको कैसे देखिए कि ये जो रोल एक मीडिया का होता है कि दिल्ली में इतनी हवा खराब है और इसकी इतनी चर्चा होती है कि जो दूसरे शहर के लोग हैं वो इस बात से ही खुश हैं कि हमारी हवा दिल्ली जितनी खराब नहीं है। तो आप क्यों, आप चूंकि मीडिया में भी आपने काम किया है, तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस है कि मीडिया को आप कैसे देख रही हैं कि वो कैसे इस इशू को कवर कर रहा है, कहाँ पे गैप है, अगर उस पर थोड़ा सा बात करें आप।
बिल्कुल, और आपको तो मालूम है मीडिया और ये सब टीआरपीस पर ही चलते हैं, तो जब मामला बिल्कुल हद से बाहर चला जाता है, विच मींस कि देखिए पूरे साल पोल्यूशन रहता है, पूरे साल, आप कभी भी दिल्ली का या कहीं भी किसी भी, जैसे आप पटना की बात कर रहे हैं, कोलकाता, हर जगह आप देखिए पोल्यूशन साल भर रहता है, लेकिन बात करी जाती है विंटर्स में जब पोल्यूशन इतना हैजर्डस हो जाता है कि कोई कोई मॉनिटर्स तो उसको मेजर ही नहीं कर पाते, इट गोज बियॉन्ड द लिमिट्स, क्योंकि बैड न्यूज इज व्हाट मीडिया पिक्स अप, दैट इज द टाइम दैट एवरीबडी टॉक्स अबाउट पोल्यूशन। बाकी साल मैं आपको कैसे बताऊं, मैं पूरे साल पोल्यूशन पर लिखना चाहती हूँ, मेरी जो लेख हैं वो कोई भी अखबार या कहीं पे भी जाते हैं पूरे साल वो नहीं कहते, नहीं अभी नहीं, अच्छा अभी वेट कर रहे हैं, अभी कुछ, अभी तो ये खबर आई है, अभी तो उनका मर्डर हुआ है, अभी तो ये इस वो, और जब विंटर्स आते हैं तो लोग मुझे बोलते हैं प्लीज हमें ये आर्टिकल दीजिए वो, और मैं कितना बोलती हूँ नहीं, मैं लिखना चाहती हूँ जब पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उस टाइम एक्चुअली सरकार को जो भी करना है, कॉर्पोरेट्स को जो भी करना है, वो उस टाइम करना चाहिए जब पोल्यूशन नहीं है, दैट इज अ टाइम, नहीं तो बाकी टाइम तो फायर फाइटिंग होती है ना, बैंडेड सॉल्यूशंस, एडहॉकिज्म। अब अभी जो लोग कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है या कोर्ट्स कर रहे हैं या हमारा कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहा है, वो पोल्यूशन को थोड़ी सॉर्ट आउट कर रहा है, वो लोगों के एक्सपोजर को कम करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये स्मॉग टावर्स हैं, जो मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि इतने बेकार स्मॉग टावर्स, स्मॉग टावर्स आर इनएफिशिएंट एज साइंस हैज शोन, देयर आर पेपर्स रिटन ऑन दिस कि कैसे स्मॉग टावर्स इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव हैं, और हमने 40 करोड़ रुपया पब्लिक का इस पे हमने लगाया है, 2 स्मॉग टावर्स दिल्ली में सेटअप करने के लिए, और वो बिल्कुल बेकार, वही पैसा अगर हम पब्लिक बसेस में लगाते या जो हम चाहते हैं जो भी एरियाज में, जैसे अपना गार्बेज को या लैंडफिल्स को बेटर करने में या कोई और इम्प्रूवमेंट में लगाते, तो उसका तो कुछ फायदा होता, लेकिन ये 2 बेकार के इमारत खड़ी कर दी हैं विच आर एक्चुअली एडिंग टू द पोल्यूशन, क्योंकि ये सब फिजिकल फिल्टर्स यूज करते हैं। आई थिंक ईच ऑफ दी स्मॉक टावर्स हैव 10,000 फिल्टर्स, वो फिल्टर्स जब क्लॉग हो जाएंगे कहाँ जाएंगे, वो हमारे लैंडफिल में जाएंगे, और वहां पे क्या होगा, इनको जला दिया जाएगा, और उससे क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा। तो आप पब्लिक मनी को बर्बाद करके आप इन फिल्टर्स को जला के एक्चुअली प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, और इस बात से मुझे इतना खून जलने लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये इतना सिंपल और इजी रेड हेरिंग सॉल्यूशन है, एक पॉलिटिकल काइंड ऑफ सॉल्यूशन है, और बाकी स्टेट्स भी धीरे धीरे यही करना शुरू करेंगे, और इसी में पैसा बर्बाद होगा और पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा और हम मरते जाएंगे।
दरअसल मुझे क्या लगता है कि ये स्मॉग टावर जो है वो मोर देन अ सॉल्यूशन, इट बिकम अ पोस्टर फॉर द इलेक्शन मे बी लाइक फॉर द वोट बैंक, कि आप लोगों को दिखा रहे हैं कुछ इंस्टॉल करके कि हम कुछ कर रहे हैं, हम सीरियस हैं और इतना पैसा हम लगा रहे हैं, जबकि आपने जो कहा पब्लिक बस की बात, मैं ऐसे एक नंबर देख रहा था, दिल्ली सरकार का खुद का एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में कि दिल्ली को 11,000 बस चाहिए और दिल्ली के पास अभी सिर्फ 6,000, उससे भी कम शायद बस है, पब्लिक बस है, और ये सारे जो 6,000 से भी कम पब्लिक बस है वो 10 साल से पुराने हैं, तो टेक्निकली दिल्ली के पास 0 बसेस हैं। तो ये 40 करोड़ रुपए अगर उन बसों को खरीदने में लगाया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता। दूसरा ये स्मॉग टावर के साथ हो रहा है कि जो दूसरे शहर के लोग हैं वो भी इसको एक तरह से पॉलिटिकल एम्बिशंस बना रहे हैं कि अगर आप हमें वोट दोगे तो हम स्मॉग टावर लगाएंगे एयर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, तो वो एक खतरनाक सा ट्रेंड बनता जा रहा है। प्रिया को भी आप देखेंगे कि बहुत क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो बहुत सारे रिसर्च हैं, मैं देख रहा था आपने आर्टिकल लिखा है, कई सारे साइंटिस्ट ने इस पे लिखा है, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है कि ये फॉल्स सॉल्यूशन है।
इनफैक्ट एक किसी ने हमारे वन ऑफ द एनजीओस में किसी ने एक आरटीआई भी फाइल किया था कि बताइए तो इसकी इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज कहाँ हैं, और उसमें था, उसका रिप्लाई था, वी हैव नो सच इन्फॉर्मेशन। जब आपके पास इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी ही नहीं है तो किस बेसिस पर आप ये स्मोक टावर सेटअप कर रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं दिस इज अ रेड हेरिंग, ये तो मतलब यू नो दिस अ वेरी इजी वे, क्योंकि ये किसी लॉबी को हर्ट नहीं करता। तो आप फायर क्रैकर्स अगर बैन करेंगे तो फायर क्रैकर्स एसोसिएशन आके कहने लगता है आप हमारी लाइवलीहुड पर, आप हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। वेहिक्यूलर पोल्यूशन, आप कहते हैं BS6 लगाइए, ये तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है, वो कहने लगते हैं कि क्यों। हाँ, तो हर जगह आपको लॉबीज को रेजिस्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए CAQM ने क्या किया, जब इन लोगों ने शुगर केन और ये सब इंडस्ट्रीज को बंद करवा दिया तो सारे लोग एफिडेविट पे एफिडेविट फाइल करने लगे, और वो एफिडेविट दे आर नॉट इवन वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन, बिकॉज सब बेकार की यू नो इन्फॉर्मेशन। उधर स्टेटिस्टिक्स कैन बी मैनिपुलेटेड बाय हूएवर वांट्स टू मैनिपुलेट इट। और तो CAQM ने उस प्रेशर को, इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग दैट प्रेशर, दे हैव बाउड डाउन टू इट एंड दे हैव सेड ठीक है आप 5 दिन खुले रहे, तो क्या 5 दिन वो पोल्यूशन नहीं होगा और सिर्फ वीकेंड में पोल्यूशन? मतलब मुझे समझ नहीं आया इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स। जब तक आप इन लॉबीज को रेजिस्ट नहीं करेंगे तब तक इस मामले का हल निकलेगा ही नहीं, उल्टा आप स्मोक टावर लगा दें ताकि लोगों को लगे कि कुछ ना कुछ तो हमारी सरकार कर रही है, देखिए हमें कितनी साफ हवा मिल रही है। एंड दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। एक तो हमने पोल्यूशन को ही नॉर्मलाइज कर दिया है, क्योंकि पूरे साल पोल्यूशन रहता है, कोई उसकी बात ही नहीं करता। जब वो हद से बाहर ही चला जाता है, जब आपको दिखने लगता है यू नो कि स्मॉग, जैसे आपकी माता जी कह रही थी, जैसे मेरी मदर कहती थी कि ये क्या, ये तो बेटा स्मॉग है, ये तो हमने दे, ऐसे तो हम क्या हम ठीक नहीं है, और क्या निकला एडमिट, नहीं हम ठीक नहीं थे। तो यही प्रॉब्लम आती है जब लोग ये स्मॉग टावर्स और लोग कहने लगते हैं। अभी मैंने किसी रिसेंटली किसी MP को सुना कहते हुए क्या सोल्यूशन है, अरे हम पेड़ लगा देंगे। भाई जब तक वो पेड़ बड़े होंगे और कुछ फायदेमंद काम करेंगे तब तक तो हम सब मर चुके होंगे। आप जो खड़े खड़े पेड़ हैं उनको तो काट रहे हैं, उसकी जगह आप सैपलिंग्स लगा रहे हैं, तो ये इसमें तो कोई मुझे लॉजिक ही नहीं दिखता। दूसरी बात, पेड़ के पत्ते क्या प्योरिफायर्स की तरह एक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं, दैट इज अनदर मिथ कि आपके पेड़ जरूर बहुत बढ़िया चीज है और वो होने चाहिए, वो ग्राउंड का सॉइल है उसको पकड़े रहते हैं, तो PM10 भी उड़ता डस्ट को वो करते हैं, और पेड़ बाय देमसेल्व्स इतने मतलब दे आर लाइक गॉड, तो उनको काटो मत। आप हम लगाएंगे पेड़, पहले आप काटो और फिर लगाओ, तो फिर आप मतलब ये तो इट्स लाइक कीपिंग ए बकेट ऑफ वाटर जिसमें बीच नीचे छेद है और आप कहें हम तो पानी भरते जा रहे हैं, भाई नीचे से छेद से पानी निकलते जा रहा है, तो इट्स लाइक दैट। इनफैक्ट स्मोक टावर्स के अगेंस्ट तो मैं इतनी हूँ, मैं क्या बताऊँ, इट्स लाइक सेइंग हम ग्लोबल वार्मिंग को डील करते हैं ऐसे कि हम बाहर एयर कंडीशनर लगा देते, तो हम बाहर एयर कंडीशनर तो बाहर ठंडा हो जाए, मतलब दिस इज रिडिक्युलस। कोई कोई शहरों ने जिन्होंने ट्राई किया है उनके तो स्मोक टावर्स ऑलरेडी डस्टबिन की तरह यूज हो रहे हैं, तो आप पहले इतने महंगे महंगे स्मोक टावर लगाए, अब 2-4 साल में आप देख लीजिएगा वो स्मोक टावर्स का ना चलेंगे, वो ऑलरेडी वो गौतम गंभीर ने वो जो लाजपत नगर में स्मोक टावर लगाया आधे टाइम वो काम नहीं करता है, आधे टाइम लोग जो उसके चारों ओर हैं कहते हैं कि यहाँ पे तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता कब कर रहा है काम कब नहीं कर रहा है, यही हालत इन 40 करोड़ के स्मोक टावर्स की होने वाली।
बिल्कुल, और इसी से मतलब एक तो जो लोग CAQM नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अभी सरकार ने एक स्पेशल बिल पारित करके एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई है जो दिल्ली NCR और आसपास के इलाके हवा को कंट्रोल करने के लिए, तो ये एक अलग इशू है कि आपके पास CAQM है, फिर दिल्ली गवर्नमेंट के पास दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, और मतलब दिल्ली सरकार भी कहती है कि वो बहुत सीरियस है एयर पोल्यूशन को लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है कि बहुत सीरियस है, कई सारे पॉलिसीज अनाउंस होते रहते हैं, NCAP हमने देखा कि 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी आया, इन सब पॉलिसीज के बावजूद इतनी चर्चा के बावजूद एक दूसरे पे ब्लेम करने के बावजूद क्या लग रहा है कि सरकार क्या कहीं थोड़ा सा भी ठीक डायरेक्शन में जा रही है या फिर अभी भी बहुत 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 ही दूर है सॉल्यूशन से?
आई थिंक अभी तो हम बहुत ही दूर हैं सोल्यूशन से, हम बढ़ रहे हैं लेकिन एक चींटी की मतलब चाल से. देखिए, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि कितने कमीशन्स हों. हमारे देश में ये ब्यूरोक्रेसी और ये कमीशन्स और ये सब, इनका बहुत वो चलता है. अभी हमारे पास एप्का था, 20 साल से एप्का कुछ नहीं कर पाया. एप्का के वॉच के अंडर हमारा एयर पोल्यूशन और वर्स हो गया. और फिर अब आपने बना दिया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, DPCC. जैसे आप कह रहे हैं, हजारों ये कमीशन्स हैं, कमिटीज हैं. इतनी सारे लोग अगर रियली में ट्राई करते तो अभी तक हमारा पोल्यूशन एकदम, चाइना ने किया, मेक्सिको ने किया, US ने, सब लोगों ने अपना पोल्यूशन खत्म कर दिया है. तो क्या इंडिया, जो हम लोग अपना चंद्रयान कर सकते हैं, हम अपना रॉकेट मून पर भेज सकते हैं, हम इतना बढ़िया मेट्रो सिस्टम, वर्ल्ड क्लास मेट्रो सिस्टम वाइल ऑन टॉप ऑफ अ सिटी हम बना सकते हैं, हम इलेक्शन में इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर सकते हैं, हम डीमोनेटाइजेशन कर, GST कर सकते, इतनी सारी चीजें हम कर सकते हैं, और हम एयर पोल्यूशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते. आई डोंट बिलीव इट. आप कहते हैं स्वच्छ भारत हमें चाहिए, लेकिन बगैर स्वच्छ हवा के स्वच्छ भारत कहाँ हमें मिल रहा है वगैरह की बात नहीं, ये इंटेंशन की बात. अभी
बिल्कुल
2 दिन पहले इंडिया टुडे ने कुछ का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन था, जब उन्होंने दिखाया कि इवन नाउ जो एनफोर्समेंट चलना चाहिए, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व हैं, वो रात को जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उन्होंने, एक रिपोर्टर ने बहुत बढ़िया काम किया, 2 रात वो दिल्ली की प्रदूषित स्ट्रीट्स में वो देखता रहा क्या हो रहा है, कहाँ से ट्रक आ रहे हैं, किसको पैसे दिए जा रहे हैं, कैसे ये ट्रक्स जिनको अंदर आना ही नहीं चाहिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके आ रहे हैं, जेनसेट चल रहे हैं रात, जो दिन में काम नहीं होता वो रात के छुपाई में हो रहा है. इसमें थोड़ा प्रदूषण कम थोड़ी होने वाला है. हमको चाहिए कि ये, अगर इस मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी पार्टी के, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो
बिल्कुल
BJP की लीडर या कांग्रेस के या किसी पार्टी के नहीं, वो हमारे, हम सब हमारे देश के सबसे प्रधान मंत्री हैं. तो अगर उनके ऑफिस में ये बात, जब उन्होंने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया तो आप देखिए क्या हुआ, अगर वो स्वच्छ हवा का अभियान चलाते तो जरूर हमारी हवा, वी नीड समबडी हु इज एम्पावर्ड, हु हैज टाइम बाउंड गोल्स एंड हु इज अकाउंटेबल. ये 3 चीजें अगर इंटेंशन रहे हमारी सरकार का, तो क्यों नहीं हमारा देश, जहाँ पे सबसे इंटेलिजेंट रिसर्चर्स, सबसे इंटेलिजेंट, हमारे देश का एक्सपोर्ट, हमारे देश के ब्रेन्स का एक्सपोर्ट पूरे दुनिया में जाता है, क्या हम अपने देश में उन्हीं उसी ब्रेन से अपनी इतनी बड़ी समस्या का हल नहीं निकाल सकते? मैं सोचती हूँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन उसका इंटेंशन होना चाहिए, और वो इंटेंशन मिसिंग है अभी.
आपने दो चीजें जो कही, एक तो टाइम बाउंड और एक अकाउंटेबल. हमारा जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो 2019 में गवर्नमेंट ने रिलीज किया, अनाउंस किया, आप देखेंगे कि उसमें ना तो कोई टाइम बाउंड मैनर पे कोई क्लियर माइलस्टोन के साथ कोई प्लान है. बहुत वेग साइक है कि हम 2024 तक 20-30% कम कर लेंगे. कोई क्लियर, कोई स्टेट रीजनल, कोई सिटी वाइज कोई माइलस्टोन उसमें नहीं है. कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है 2020 में कितना करेंगे, 2021 में कितना करेंगे, 2022 में कितना करेंगे, इसका पूरा गैप है. और उसको किसी भी एक्ट में भी नोटिफाई नहीं किया गया है. तो बेसिकली वो एक तरह से गाइडिंग डॉक्यूमेंट तो हो सकता है पॉलिसी को बनाने के लिए या वो करने के लिए, लेकिन वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है. और उसके लिए किसी को अकाउंटेबल आप नहीं ठहरा सकते, भले उसका रिजल्ट कुछ भी हो. तो ये एक जो पॉलिसी में गैप है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? क्या वो सिर्फ सरकार कर सकती है, या फिर लोगों को भी इसके लिए कुछ करना होगा? क्योंकि एक जो डिबेट है इन जनरल, पर इन्वायरमेंट के सर्कल में मैं देखता हूँ कि ये डिबेट है कि लोग इंडिविजुअल बिहेवियर पे बहुत बात करते हैं, और मैं मानता हूँ कि इंडिविजुअल बिहेवियर भी बहुत ज़रूरी है. एज अ कम्युनिटी हमें भी कुछ स्टेप्स लेने ही होंगे, लेकिन वो सिर्फ, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इंडिविजुअल अपने लाइफ में चेंज नहीं करूँगा. अगर मुझे अपने लाइफ मतलब कोई स्टेप लेना है इंडिविजुअल लेवल पे, तो मैं उसमें सरकार को भी क्वेश्चन करूँगा, सरकार को भी अकाउंटेबल होल्ड करूँगा, तब जाके वो इंडिविजुअल जो मेरा स्टेप है वो कंप्लीट होगा. आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो पीपल पावर पब्लिक प्रेशर बनाने की बात है, वो क्या कितना ज़रूरी है और कैसे होगा?
देखिए, आपने दो चीज़ों की बात करी. एक तो आपने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करी, उसमें मैं कहूँगी मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि कम से कम एक डॉक्यूमेंट तो है जो गाइडिंग डॉक्यूमेंट. पहले तो ये भी नहीं था, लेकिन ये बहुत कम है. इट्स टू लिटिल. इट इज़ लाइक यू सेड, नीदर टाइम बाउंड नीदर फाइनेंस. मतलब फाइनेंसेस भी इसके लिए कहाँ हैं, कौन से अकाउंट से इसमें फाइनेंस आ रहे हैं, कौन है अकाउंटेबल, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. तो एज इट स्टैंड्स इट इज़ क्वाइट यूजलेस. मतलब यू नीड टू हैव हमारे यहाँ एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी चल रही है, उसमें आप मतलब अगर देखिए, अगर आप रस्ते में किसी को मरते हुए देखेंगे, आप ये थोड़ी कहेंगे चलिए मैं एक पॉलिसी बनाता हूँ जिसकी वजह से ये आदमी आगे जिंदा हो जाए. ऐसा नहीं, वो मर रहा है, आपको फटाफट उसको एम्बुलेंस में लेके जाना है. आप यू हैव टू एक्ट विद अर्जेंसी. सो ये अर्जेंसी इज मिसिंग इन इन पब्लिक पॉलिसी एंड एक्शन राइट नाउ एंड एनफोर्समेंट. जो करंट लॉज हैं उनको तो एनफोर्स आप कर नहीं पा रहे हैं. आप एक और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ला रहे हैं जो एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है जरूर, और अच्छा गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, लेकिन इट हैज नो टीथ. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, अगेन फॉर दैट इंटेंशन टू बी देयर. दूसरी बात, आपने बात करी कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. एयर पोल्यूशन एक इतनी जटिल समस्या है कि कोई एक जना अपने आप से कभी इसको सॉल्व नहीं कर सकता. इनफैक्ट द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फाउंड जब हम स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, RWAs में जाते थे, लोगों को ये बात बताते थे तो वो सहम जाते थे, डर जाते थे, लेकिन फिर वो कहते थे पर हम तो एक ही हैं, हम क्या कर सकते हैं. इसमें बहुत ज़रूरी है फॉर गवर्नमेंट एक्शन, कॉरपोरेट एक्शन, ऑल पार्टी कोलैबोरेटिव एक्शन एंड ऑफ कोर्स सिविल एक्शन. तो हम सबको करना है, लेकिन 1.4 बिलियन लोग थोड़ा 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 करेंगे, और एक सरकार जिसका इतना बड़ा हाथ है वो एक पॉलिसी करेगी, कौन ज्यादा किसका पलड़ा भारी होगा, वो कोई भी आप खुद देख सकते हैं. एंड इस मैटर में मैं जरूर कहूंगी लोगों की बहुत जिम्मेदारी है, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो थ्रू बैलेट्स एंड दे वॉलेट्स उनको उन कॉर्पोरेट्स का सामान खरीदना चाहिए जो जो साफ हवा की बात करते हैं और करते भी हैं. मतलब आप कोई भी छोटे टाउन में, आप इंडिया में कहीं भी जाइए, एक तो रास्ते में जो आपको इतना प्लास्टिक दिखेगा, जो यू नो, चाहे वो हल्दीराम के पैकेट ना हो, चाहे वो नूडल के पैकेट हो, चाहे वो हर जगह. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट्स की यहीं से स्टार्ट होती है. जब आप इतना बेच सकते हैं तो आप उसको साफ नहीं रख सकते क्या? और लोगों को भी सिखाइए. ऑफकोर्स we need segregation at the ground level, we also need policy at the top level, and we need the corporates to provide the finance as well. सब तीनों चीजों की जरूरत है, नहीं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती. एक जना तो उसको हम मतलब हनुमान जी तो है नहीं कि हम आके उसको एक एक जोर से हवा का झोंका आएगा और सारा पोल्यूशन इंडिया से चला जाएगा. तो यू नो वी हैव टू हैव अ सिचुएशन वेयर एवरीबॉडी इज वर्किंग टुगेदर विद दिस सिंगल गोल कि हमें सबसे पहले अपनी हवा साफ करनी है. क्योंकि यू नो हम अपने देश में हर समय जीडीपी ग्रोथ की बात करते रहते हैं, लेकिन जीडीपी इज अ वेरी मिसलीडिंग नंबर. उसमें ये पता नहीं चलता कि उस जीडीपी के अंदर कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग सफर कर रहे हैं, कितने लोग अनप्रोडक्टिव हैं, कितने डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, कितने दिन मिस होते हैं काम के, वो नंबर इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता. तभी जब लोग जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, मैं कहती हूँ उस जीडीपी को उतने से कम कर दीजिए जितने लोग बीमार हैं. तो अगर ऐसा हम करते तो हमारा जीडीपी कितना कम हो जाता. उसकी जगह हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लोगों को, यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वी हैव टू फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड नॉट जस्ट ग्रोथ, बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी को बोलेंगे देखिए मैं आपको एक 10 लाख रुपया दे देता हूँ, आप लेना चाहेंगे? उसके साथ आपको लंग कैंसर भी मुझे देना पड़ेगा. तो मतलब आप कौन है, हम में से कोई भी है जो कहेगा चलिए आप मुझे 10 लाख दे दीजिए? Nobody wants to be sick. Health is the ultimate wealth, and we have to somehow get the government to respond to this demand. ये छिपी हुई प्रॉब्लम है, अदृश्य प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग अपने वोट्स में और अपने वॉलेट से दिखा नहीं सकते. लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तभी मैं बार बार कहती हूँ अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग. अगर हम सब जानते, एंड मैं बता रही हूँ सरकार कर सकती है अविनाश जी, बिकॉज देखिए जब कोविड हुआ, आप बिना कोविड के बारे में, मतलब दैट इंफॉर्मेशन वाज स्प्रेड सो फास्ट, आप फोन किसी को नहीं कर सकते थे विदाउट हियरिंग द ऑल दोस मैसेजेस. आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे विदाउट सीइंग ऑल द, इन्होंने सारी रिसोर्सेज यूज करी, और कितनी जल्दी ये अवेयरनेस फैल गई इस पूरे देश में, जहाँ पे इतनी लैंग्वेजेस यूज हो ही जाती हैं, फिर भी सबको मालूम था कि कोविड क्या है। तो इसी तरह सबको पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन क्या है, प्रदूषण क्या है, कैसे हमको अफेक्ट करता है, कैसे छोटे छोटे बच्चों को और हमारे बूढ़े लोगों को अफेक्ट करता है, हम लोगों को अफेक्ट कर रहा है, ताकि लोग फिर उस मुद्दे पर भी वोट करें। बट सरकार चाहती नहीं, क्योंकि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल दोनों उनके हाथ में है। इट इज़ लाइक सेइंग आप अगर एक क्लास में जाएं और एक बच्चे को आप मॉनिटर बना दें और कहें कि चलिए आप इस क्लास के मॉनिटर हैं, फिर आप आके उस बच्चे से पूछें क्लास कैसी बिहेव कर रही थी, वो बच्चा कभी बताएगा ही नहीं कि इतने शैतान बच्चे क्लास में हैं, क्योंकि उस पर रिफ्लेक्ट बैड ही विल इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन हिम। तो वो कहेगा नहीं नहीं क्लास बहुत अच्छी है, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, ये सब क्लास को मैंने कंट्रोल कर दिया है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑल्सो, देयर इज एन इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट हियर, बिकॉज सरकार इस बात को छुपाना ही चाहती है, क्योंकि अगर नहीं छुपाएगी, अगर सबको मालूम होगा इतना एयर पोल्यूशन है, तो फिर लोग कहेंगे तो आप क्या कर रहे हैं।
तो मुझे याद है 2019 का जनरल इलेक्शन शायद पहला था जिसमें कई सारे पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में एयर पोल्यूशन के मुद्दे को उठाया था, बोला एटलीस्ट दे हैव मेंशनड अबाउट द एयर पोल्यूशन क्राइसिस। अक्सर लोग बोलते भी हैं कि जब तक इसको वोटिंग का इशू नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी नहीं होता इस देश में, और वो वोटिंग का इशू नहीं बन रहा है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा पक्ष ये भी है कि कुछ तो प्रेशर क्रिएट हुआ जिसकी वजह से इन पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो में एयर पोल्यूशन को एक्नॉलेज करना पड़ा या फिर पार्लियामेंट में उनको बोलना पड़ रहा है। तो आप जैसा बता रही थी कि 2009-10 से आपने शुरू किया और आज 10-11 साल हो गए, एक वन डिकेड, इट्स ऑलमोस्ट वन डिकेड। तो इसके बीच में क्या ऐसा कुछ हुआ, क्या पब्लिक प्रेशर बने, क्या सिविल सोसाइटी ज़्यादा अवेयर हुई, सिटीजन मूवमेंट्स हुए, क्या कुछ ऐसा हुआ जो चेंजेज हुए जो आज 2021 में एटलीस्ट जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो बात कर रही है एयर पोल्यूशन को लेकर।
तो मैंने एक्चुअली अपनी किताब में भी इसको ट्रेस किया है कि कैसे ये हुआ कि फ्रॉम बीइंग, जैसे मैं भी समझती थी ये तो फॉग है, जब हर विंटर में फ्लाइट्स डिले हो जाती थी वगैरह, हम भी सोचते थे कि ये तो फॉग है भाई, अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन। आई थिंक इसलिए बदलाव ये आया है, एक तो 2015 में बराक ओबामा आए थे इधर, तो जब US प्रेसिडेंट इधर आए हमारे रिपब्लिक डे के लिए और मीडिया ने लिखना शुरू किया कि ही हैज लॉस्ट, आई थिंक ही सेड 2 days ऑफ हिज लाइफ बाय ब्रीदिंग दिल्ली'स एयर, तो मतलब अगेन दैट वाज अ स्टोरी, दैट वाज अ ह्यूमन स्टोरी कि एक आदमी ने इतने दिन दिल्ली की हवा ब्रीद करके इतना अपना लाइफ लूज किया, तो ये इस पीपल कुड रिलेट टू दैट। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट यू नो अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट कि भाई ये तो कुछ है, अब अगर बराक ओबामा 2 दिन में इतनी उन्होंने लाइफ लूज करी तो फिर हम लोग का क्या हो रहा है। और फिर द US एम्बेसी, ये भी मैंने किताब में लिखा है, उन्होंने जब तक देखिए कोई चीज़ अगर दिखती नहीं है तो आप उसमें विश्वास नहीं करते, व्हाट द माइंड व्हाट द आईज डोंट सी द माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड। द US एम्बेसी हैड सम मॉनिटर्स एंड दे वर नॉट शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन फॉर डिप्लोमेटिक रीजंस, ये भी मैंने किताब में लिखा है, क्योंकि यू नो आप जिस देश में अपनी एम्बेसी सेटअप कर रहे हैं उसी देश से कहना आपकी तो हवा प्रदूषित है, दैट इज़ नॉट अ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। बट फिर जब उन्होंने ये डेटा शेयर करना शुरू किया तब लोगों को पता चला कि ठीक है हमें चाहे दिख नहीं रहा है बट हवा तो प्रदूषित है, और ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जब मॉनिटर्स लगना शुरू हुए, जब लोगों ने उन मॉनिटर्स का इन्फॉर्मेशन, पहले भी मॉनिटर्स थे लेकिन उसका सारा इन्फॉर्मेशन वॉज जैसे कहते हैं ना हिडन इन प्लेन साइट, आप इतना उसको कॉम्प्लेक्स बना दें कि किसी को समझ ही ना आए, इट्स लाइक आप मुझसे अगर किसी और भाषा जापानीज में बात करेंगे तो मुझे समझ तो आएगा नहीं, और आप कह देंगे मैंने तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, मैंने तो आपको सारे वो, बट that language, that vocabulary of the experts, we do not understand. That's why it's very important to simplify that. So, जब उन्होंने किया तो एक तो ये था कि वहाँ के US प्रेसिडेंट आए, दूसरी बात फिर a lot of the foreign journalists started writing about it in their newspapers. तो हमारे इंडियन जर्नलिस्ट जिनको मालूम था और वो लिखते थे बट उनके एडिटर्स प्रिंट नहीं करते थे क्योंकि ये स्टोरी तो इतनी जरूरी है नहीं अंदर के पेजेस में, देन दे ऑल्सो स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द स्टोरीज। द थर्ड थिंग दैट आई थिंक एंड फॉर दैट आई ऑलवेज फील कि चलिए एटलीस्ट इतना तो आम आदमी पार्टी ने किया, देखिए ऑड इवन ने हमारी प्रदूषण को कम नहीं किया होगा लेकिन ऑड इवन ने उसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ाई, क्योंकि जब आप ऑड इवन की अब बात करते हैं सबको मालूम है क्यों हुआ ऑड इवन, क्योंकि प्रदूषण बहुत था। तो इस मामले में मैं आम आदमी पार्टी को फुल मार्क्स दूंगी कि एटलीस्ट उन्होंने एक्नॉलेज किया और उन्होंने प्रदूषण की बात शुरू करी, जो किसी और पार्टी ने अभी तक मेरे हिसाब से तो किसी ने उनके पहले ये बात चुन। हाँ, शीला दीक्षित जी ने जब ये कन्वर्जन होना था टू सीएनजी, जब हमारे जब मैं जब उसकी बात कर रही हूँ 90s की बात, उन्होंने किया जरूर, लेकिन वो जो एक्नॉलेजमेंट और उसके बारे में डिबेट और इंफॉर्मेशन होती है वो तो उस टाइम भी किसी को नहीं मालूम थी। तो ये कॉन्वर्सेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दूसरे से हम बात करें, इंफॉर्मेशन शेयर करें, उसको सिंप्लीफाई करें, समझें कि क्यों हमारे लिए ये इतना खराब है। बिकॉज यू सी एयर पोल्यूशन टू मी इज नॉट an environmental problem, it is a health problem. Our health minister should be involved, not only our environment minister, because environment ki theek hai, environment ki problem hai, lekin sabse pehle ye hum apne जिगर में फील करते हैं, हम अपने दिमाग में फील करते हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर फील करते हैं। तो ये चीज जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको इट्स अ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी। अब आप मुझे बताइए, अगर बाहर देश का कोई हमारे ऊपर अटैक होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस के लोग सारा एक वॉर रूम सेटअप करते जिसमें वो उसको डील करते ऑन एन अर्जेंट बेसिस। अब ये अंदर की एनिमी है, एयर पोल्यूशन अंदर से ही हम पर वार कर रहे हैं,
वो भी इनविजिबल,
वो भी इनविजिबल लाइक अ गुरिल्ला वॉरफेयर। तो इसके लिए भी उतना ही जरूरी है कि हमारे देश के जो लीडर्स हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको कहना चाहिए कि सबसे पहले इसके लिए एक वॉर रूम सेटअप करो। एटलीस्ट केजरीवाल जी ने एक छोटा सा ग्रीन वॉर रूम सेटअप किया है, पता नहीं उसमें क्या होता है नहीं होता है,
पर एक चीज जो है, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ कि मैं एक ऐसे इमेजिन करने लगा जब आप बोल रहे हो वॉर रूम सेटअप करने का, उसमें हमारी जो दिक्कत एक आ रही है कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, फिर स्टेट के की सरकारें हैं। अब उस वॉर रूम को रूल कौन करेगा, उसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा? अब सारे आपस में ये लोग इतने इतनी लड़ाइयां हैं इनकी, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि सबको एक कमरे में बैठा दो, तो ये लोग क्या, आपको लगता है कि एयर पोल्यूशन जैसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए ये लोग एक साथ नहीं आ रहे हैं और इनको आना चाहिए? मतलब
तभी तो मैं कह रही हूँ अविनाश जी, द प्रॉब्लम इज कि ये ऊपर से इस एक तो सबसे पहले जो लीडर ऑफ द नेशन है उसको ये करना चाहिए, तो ये प्रधानमंत्री जी को लीड करना चाहिए। ऊपर और नीचे दोनों, ग्रास रूट से भी होगा और ऊपर से भी होगा, तभी ये प्रॉब्लम, ये इतनी परवेजिव और इतनी जटिल समस्या है कि ये जब तक सारी तरफ से इस पर वार नहीं किया जाएगा ये जाएगी ही नहीं। तो आगे से हमारे प्राइम मिनिस्टर लीड करें और पीछे से हमारे जो ग्रास रूट्स के इतने एनजीओज हैं जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इवन एट द ग्रास रूट लेवल, जैसे पंचायत हैं, जो मतलब हर जगह से हर जने को इस पर फोकस करना पड़ेगा और तभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकती है। अगर ऊपर से कहें कि ये आप मत जलाइए कोयला, और कोई घर में शिवर कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं क्यों नहीं जलाऊं जी, मैं तो मर जाऊंगा ऐसे, जब तक सरकार उनको कोई अल्टरनेटिव नहीं देगी। लीजिए आपको जैसे अब वो उज्ज्वला स्कीम, इतनी बढ़िया स्कीम थी जिसमें वो एलपीजी स्टोव दे रहे हैं टू विमेन इन बिलो पॉवर्टी लाइन, बट अगर आप उनको एक एलपीजी दे दें और दूसरा आप नहीं दे पाए, उनको रिप्लेस ना कर पाए, तो वो कैसे करेंगे? वो एक बार की मैं पूरे पूरी पूरी जिंदगी थोड़ी चला सकते हैं, वो वापस फिर वो फायरवुड में जाएंगे जो फ्री है, जो काउडंग जो फ्री है। यू कांट जस्ट डू इट एट अ वन ऑफ, क्योंकि दिस प्लान वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री। अगर इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती और उन्होंने हर जने को जाके बोला होता, देखिए इससे आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, इससे आपकी हेल्थ बेटर होगी, तब हर औरत जो सफर करती है, जो कोयला जला के फूक फूक के अपना खाना पकाती है, वो कहती कि नहीं हमें इस एलपीजी अब सब्सिडाइज दो और हम लेंगे। इट हैज टू बिकम अ हेल्थ इशू एंड इट इज अ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी। तो जब तक ऊपर और नीचे दोनों तरफ से काम नहीं होगा और कोलैबोरेशन नहीं होगा, आप एक कमरे में एक वॉर रूम बना रहे हैं और सब लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं, तो कहाँ से वो एनिमी को वैंक्विश करेंगे, वो तो वही नहीं
हाँ
पाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत साफ है कि पूरा एक एयरसेड अप्रोच के साथ, एक रीजनल और अप्रोच के साथ ही इसको काबू में किया जा सकता है। मैं ऐसे देख रहा था कि जैसे एनकैप है जिसमें अभी 133 सिटीज हैं, और अगर आप जो एयर क्वालिटी डेटा अगर उठाएंगे, लगभग 300 के करीब शहरों की हवा का कुछ कमोबेश हम लोग निगरानी करते हैं, और उसमें से 80% से ज़्यादा जो है वो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते। तो दैट मीन्स कि जो पूरा सिर्फ 133 शहरों के अलावा जो बाकी शहर हैं उनको भी योजना में लाने की ज़रूरत है, लेकिन वो
बिल्कुल
बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो तो एक 133 का ही होना मुश्किल लग रहा है, और जो पैसे फंड वगैरह आ भी रहे हैं वो काफ़ी ही, मतलब उन्हीं 40-50 शहरों के लिए आ रहा है जो सो कॉल्ड मिलियन प्लस हैं। तो ये सब जो इश्यूज हैं वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही सीरियस है और उसको टैकल करने की ज़रूरत है। लेकिन थोड़ा सा मैं अब इसको वाइंड अप करते हुए मैं एक आपसे एक अगर फाइनल रिमार्क्स, अगर जो जो लोग सुन रहे हैं एकदम कॉमन लोग हैं, जो कुछ मतलब ये पॉलिसी है, पॉलिसी की दिक्कतें हैं, सबको सारी दिक्कतें हैं, लेकिन वो क्या करे, जो आपने पहले भी बोला कि एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है इसमें, या फिर कोई राइटर है, कोई कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यूथ है, कोई वर्कर है, ये सब अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में?
सबसे पहले तो हमको अपने को अवेयर बनाना है, चाहे वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर क्यों ना हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस मैन क्यों ना हो, क्योंकि एक्चुअली इसमें एक ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो अवेयरनेस है, वो है थोड़े एजुकेटेड लोगों के पास, और जो प्रॉब्लम है सबसे मार्जिनलाइज लोगों को सबसे ज्यादा लगती है। सो दैट इज द अदर इनइक्विटी, क्योंकि जब आदमी अपनी दो टाइम की रोटी ही कमाने के लिए अपना सारी एनर्जी लगा रहा है, उसको कहाँ टाइम है सुनने के लिए कि भाई इससे ये प्रॉब्लम आती है, इससे वो प्रॉब्लम आती है, वो तो पहले ही उस प्रॉब्लम को लिव कर रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक आर सेल्व्स अवेयर, बिकॉज अगेन आई जस्ट वॉन्ट टू रिपीट दिस, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड। देखिए, कोई कोई लोग हैं, स्पेशली द एजुकेटेड पीपल, दे हैव द लग्जरी ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। जब हवा बहुत ही ज्यादा प्रदूषित और जहरीली हो जाती है बाहर, तो कम से कम कोई लोग अपना घरों के अंदर एयर प्योरिफायर लगा के काम करते हैं। अब आप समझिए, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जो जिसको जो डेली वेजर है, अगर वो काम पे नहीं जाएगा तो उसको उस दिन की कमाई नहीं मिलेगी। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, हमारे खुद के ट्रैफिक पुलिसमैन, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉयज हैं, वो अगर बाहर नहीं जाएंगे और अपना काम नहीं करेंगे तो ठीक है, कितने दिन छुट्टी कर सकते हैं, दे कैन नॉट वर्क फ्रॉम होम। इट इज एन इनइक्विटी, उनको तो रोज थोड़ा थोड़ा करके मर रहे हैं, और हम लोग जो घरों में बैठ के अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तभी हमारी ज्यादा हमारा इवन ज्यादा कर्तव्य बनता है कि हम इस बारे में लिखें, इस बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करें। तो जो आप कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के द्वारा, वो बहुत ही एक बड़ा काम है, क्योंकि आपके पॉडकास्ट के द्वारा जो लोग सुनेंगे उनको अवेयरनेस होगी कि ये कितनी जहरीली हवा मुझे कितनी जल्दी मार रही है, मेरे माई लव्ड वंस को कितनी जल्दी मार रही है। तो सबसे पहले वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स अवेयर। सेकेंडली, जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, जैसे मैं अपने घर में कंपोस्टिंग करती हूँ, आप भी कर सकते हैं, सेग्रीगेशन सब कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं
बिल्कुल
उतना करें। कम से कम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये बहुत पुराने और थके हुए टर्म्स हैं, बट दे आर स्टिल एज वैलिड एज बिफोर। आप नई टेक्नोलॉजी तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कभी नहीं बदलेगी। आप सबसे कम, पहले तो ये सस्ते सस्ते कपड़े जो हम लोग सब, जब मैं कॉलेज में थी तो ठीक है, हम एक की जगह हमारे पास चलिए दो या तीन सूट्स या फ्रॉक्स होते थे, अब हर जना दस दस बारह बारह। इट्स सो इजी, आप अमेजोन में एक स्वाइप करिए, आपके पास घर में पहुंच गई चीज। तो इट हैज बिकम सो इजी, वन हैज टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ। अपने बच्चों को सिखाया जाए, मैंने तो अपने दोनों बच्चों को ये सिखाया है, जब तक चीज जरूरत, एंड कोविड हैज टॉट अस अविनाश जी कि हम बहुत कम चीजों के साथ
बिल्कुल
रह सकते हैं, हमें इतनी चीजों की, मटीरियल चीजों की जरूरत ही नहीं है। अब कंपनी सुनेंगी ये बात तो कहेंगी, ये देखिए ये तो दिस इज ये तो गलत बात है कि हमारी कमाई कम हो जाएगी। उनको भी ये सोचना चाहिए, आप किसी को कपड़े ज्यादा दे दें और उसी के साथ दो चार बीमारियां दे दें, इज दैट बेटर? एक एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एंड आई थिंक वी हैव टू ऑल मेक आवरसेल्व्स अवेयर। चाहे चीज थोड़ी ज्यादा महंगी हो, इनफैक्ट द कॉस्ट ऑफ दीज चीप थिंग्स इज नॉट इन दैट इन द कॉस्ट ऑफ दैट थिंग इटसेल्फ. आप 100 रुपए की आप नायलॉन की साड़ी खरीद लें, लेकिन एक्चुअली उसकी वैल्यू 100 नहीं है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि जो उसके साथ जो इनडायरेक्टली उसने जितना पॉल्यूशन कॉज किया है वो आप उसमें गिन ही नहीं पा रहे हैं. तो रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं. मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहती हूँ. मैं अभी थोड़े दिन पहले, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं क्योंकि मैं पढ़ती बहुत हूँ, लेकिन मैं एक नया बुक केस नहीं खरीदना चाहती थी. मैंने सोचा क्या किस चीज को मैं यूज कर सकती हूँ अपने घर में, तो मुझे प्लैंक्स दिखे, तो उसकी मैंने मतलब उनपे बीच में ईंटा लगा के मैंने उसका एक बुक केस सा बना दिया. फिर जब किताबें बढ़ती रही, बिकॉज किताबें एक चीज है जिसपे मुझे लगता है कि उस पे मैं किसी और चीज पे खर्चा कम कर लूंगी, बट बुक्स आर माय थिंग टू द वर्ल्ड, वो मेरी वीकनेस है. तो मैंने कहा चलिए मैं नया बुककेस नहीं खरीदना चाहती. मैं अमर कॉलोनी गई, वहां पे सारे पुराने फर्नीचर वो हाँ, तो वो उसको, और जो मैंने उधर देखा, माय गॉड, मेरी तो आंखें चौंधिया गई. बिकॉज पुराना पुराना सामान ये लोग लेकर उसको बिल्कुल इतना नया दिखा देते हैं, और वो कह रहे थे हमारे से तो कौन कौन लोग सामान लेके गए, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये सारे राजा महाराजा लोग हमारे से, तरुण तहलियानी, सारे ये डिजाइनर्स लेके जाते हैं. तो मैंने कहा आप जानते हैं आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें नहीं तो हमारे लैंडफिल्स में ही जाती. सो दीज आर स्मॉल वेज ऑफ reducing, recycling. This is very important, which all of us as individuals can do. Then we can take public transport if we are able to take public transport. मैं तो पहले I was very fond of cycling. दिल्ली में तो cycling करने में भी डर लगता है. तो हमने अब electric car ले ली है. तो क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह से हम अपना footprint, अपना air pollution footprint कम कर सकें, अपना carbon footprint कम कर सकें, वो चीजें we have to try and walk our talk. अपने बच्चों को समझाएं, अपने बड़ों को समझाएं. मतलब जैसे आपने अपनी मदर की बात करी, मैंने भी अपने पेरेंट्स को बहुत बार समझाने की कोशिश करी. और बच्चों को समझाना आसान है, अपने माँ बाप को समझाना बहुत मुश्किल होता है. वो हमसे बोल देते हैं बच्चों तुमको किसने सिखाया, तुम जरा चुप हो जाओ. तो ये सब चीजें अपने नेबर्स को समझाएं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, लगती छोटी छोटी चीजें. और फिर मैंने अपनी तरफ से यही सोचा कि मैं और तो कुछ कर नहीं सकती, आई एम ओनली ट्रेन्ड एज अ जर्नलिस्ट, तो लिखें इसके बारे में. अगर लिखते नहीं, अगर आप गीतकार हैं तो इसके बारे में गीत बनाएं, इसके बारे में संगीत. अगर आप फिल्म मेकर हैं, इसके बारे में फिल्म बनाएं. बेसिकली स्प्रेडिंग अवेयरनेस इज द फर्स्ट वे, तभी ये बात वोटिंग इशू बन सकता है. इतने लोग इसके बारे में, हर चाय की दुकान में इसी के बारे में बात होनी चाहिए कि आज का प्रदूषण क्या है, तो तभी लोग इसको आगे ले जा सकते हैं और इसकी डिमांड कर सकते हैं कि हमें हमारी साफ हवा वापस दो.
थैंक यू सो मच ज्योति, आपने इतने अच्छे से ये कंक्लूड रिमार्क्स किया. और जो एक चीज जो रह गया मेरे दिमाग में वो ये कि जो अमर कॉलोनी में आपने बताया कि उन लोगों को कि कैसे किस तरह से वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों ने पहले बात किया कैसे इंडिविजुअल एयर पॉल्यूशन है, लेकिन ये जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस हैं जो ये लोग कर रहे हैं उसको भी एज अ सोसाइटी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते. इसी दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा लोग रोज साइकिल चला के अपने काम पे जाते हैं, 30 से 40 लाख लोग पब्लिक बस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब अगर हम अपने शहर को देखें तो वो एक तरह से इनविजिबल हैं. इनके बारे में कोई बात नहीं होती, इनके लिए कोई पब्लिक स्पेस में जगह नहीं है. तो मुझे लगता है कि ये जो एक हम एज अ एक्टिविस्ट, एज अ रिसर्चर, एज अ सिटीजन इवन, हमें इनके जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, उसको इसी तरह से मतलब थोड़ा सा एक्नॉलेज करने की जरूरत है और उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से बताने की जरूरत है. तो शुक्रिया, बहुत थैंक यू कि आपने वो स्टोरी हमारे साथ शेयर किया. जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर वो आप तक पहुंचना चाहें तो अगर आप कोई अपना ट्विटर कुछ एड्रेस बता पाए जहाँ पे वो आप तक पहुंच सकते हैं.
हाँ, मैं केयर फॉर एयर इंडिया से ट्वीट करती हूँ, और मेरी जो वेबसाइट है वो jyotipandey.in है. वो तो किताब के लिए है. अगर कोई, इनफैक्ट मैं बहुत ही आभारी रहूंगी अगर कोई इस किताब को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इसको स्प्रेड करना चाहे, फॉर मी दिस इज़ नॉट अबाउट कॉमर्स, मुझे इसका कोई वो कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं चाहिए, बट अगर कोई इसको तमिल में या मराठी में या कोई भी भाषाओं में डिस्ट्रीब्यूट करके सॉरी प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट, ताकि ये बात बहुत दूर दूर तक पहुँचे कि एयर पोल्यूशन हमें कैसे मार रहा है. I think I'm not on any other social media. I also try and keep away from social media.
Yeah.
That's the only two ways. jyotipandey.in and Care for Air India. हमारा Twitter address है.
Thank you so much, Jyoti. आपने इतना इतना अच्छे से explain किया और इतना लंबा समय भी दिया
इसके लिए. Thank you so much. ये मुझे तो आपको thank करना चाहिए, अविनाश जी. I hope बहुत से लोग आपका podcast सुने और बहुत से सवाल आपके पास आए और बहुत से लोग इसकी जानकारी उनके लिए बढ़े and बहुत लोग अपने आप को protect कर सकें और कुछ न कुछ प्रदूषण के अगेंस्ट अपनी आवाज उठा सकें.
थैंक यू.
इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में. आप सुनते रहिए ये जो क्लाइमेट है.